ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आप सभी राजकोट सब जोन के भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है। राजकोट वालों को सदा क्या याद रहता है? हाँ, राजाई कोट। बाबा ने बहुत शुरू से भारती दीदी को ये बताया, राजकोट के भाई बहनों को बताया कि भाई राजकोट माना राजाई कोट पहनने वाले, राजाई पद पाने वाले। इसलिए साधारण पुरुषार्थी तो नहीं रहना है, ये पक्का है ना सबको? हाँ, कि साधारण पुरुषार्थी नहीं, तीव्र पुरुषार्थी, उत्तम पुरुषार्थी बनना है। जब लक्ष्य पक्का रहता है तो पुरुषार्थ अपने आप चलता है। कहा भी जाता है कि लक्ष्य चुक जाते हैं, सिद्ध नहीं कर पाते हैं, वो माफ है, परंतु नीचा लक्ष्य तो कभी होना ही नहीं चाहिए। तो हम सब ने भी इस रूहानी पढ़ाई में ऊंचा लक्ष्य रखा। ये पढ़ाई है ही मनुष्य से देवता बनने, परंतु देवताओं में भी उच्च पद पाना है। तो जितना ऊंचा लक्ष्य होगा उतना ही पुरुषार्थ करने का, प्रैक्टिकल बनने का उमंग उत्साह रहता है। जैसे ही हमें हमारे अनेक जन्मों की भक्ति का फल सत्य ज्ञान मिला, क्योंकि भक्ति है भावना, श्रद्धा, विश्वास, बिलीफ, मान लेते हैं ना, भक्ति में मानते हैं बस। परंतु हमारी उस भावना का, श्रद्धा का, विश्वास का फल बाबा ने आकर दिया सत्य ज्ञान के रूप में। बाबा की सबसे बड़ी देन, सबसे बड़ी प्राप्ति हम बच्चों को जो है वो सत्य ज्ञान है। सही ज्ञान, मूल सत्य ज्ञान ना होने के कारण अज्ञान, अल्प ज्ञान, मिथ्या ज्ञान के कारण ही तो हम भटक गए। हमारे कर्म गलत हो गए, इसलिए देखो दुनिया में इतने शास्त्र है, ग्रंथ है, हर धर्म संप्रदाय मठ पंथ की अपनी अपनी किताबें हैं, इतने चिंतक हैं, लेखक हैं, वैज्ञानिक हैं, हर क्षेत्र में खोज हो रही है, फिर भी भगवान को ही क्यों कहते हैं तमसोमा ज्योतिर्गमय, है ना? हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, परमात्मा को ही क्यों कहते हैं? क्योंकि वो ही हमें सत्य बताता है। बाबा का सृष्टि पर आना, ब्रह्मा तन में प्रवेश करना, और आते ही ज्ञान देना। बाबा ने आते ही अपना सत्य परिचय दिया ना, कौन से महावाक्य उच्चारण किए थे बाबा ने? निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, निज ज्ञान स्वरूपम, निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवो, मैं खुद शिव हूं, ज्ञान स्वरूप, आनंद स्वरूप, प्रकाश स्वरूप। जिस सत्य ज्ञान से आत्मा जगती है, हमारा विवेक जग जाता है, हमें सद्विवेक प्राप्त होता है कि भाई जो सुनते आए मानते आए वो क्या था और सत्य क्या है, बुद्धि जग जाती है। तो बाबा की सबसे बड़ी देन दिव्य बुद्धि है, सद्विवेक है, हम राइट रॉन्ग को परख सकते हैं, सार असार को समझ सकते हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो विवेक ही सबसे बड़ी प्राप्ति है बाबा से। इसलिए रोज बाबा के मधुर महावाक्य हम सुनते हैं और रोज अपने विवेक को और रिफाइन शार्प करते रहते। ये सामान्य बात नहीं है, यही सबसे बड़ी प्राप्ति। लोगों ने ऐसी भाषा में ज्ञान दिया जो सामान्य जनता समझ नहीं सकती, संस्कृत में ज्ञान दिया। तो विद्वानों ने, पंडितों ने, ब्राह्मणों ने, पुजारियों ने मोनोपोली कर ली कि हम समझाएंगे तो ही आप समझेंगे, तो उनके बंधन में आ गए, क्योंकि संस्कृत हर कोई समझता नहीं था। और उन्हीं दिनों में जब बुद्ध ने, महावीर ने आम भाषा में पाली भाषा में ज्ञान दिया तो लोग जल्दी समझने लगे। तो हम आधारित हो गए, परवश हो गए कि भाई ब्राह्मण पंडित यही हमें पार करेंगे। बाबा ने बिल्कुल सरल शब्दों में मूल सत्य ज्ञान दिया, तो वो कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज यूज करते हैं लेकिन मूल सत्य कोई नहीं बता सकता। आप देखो योग सिखाते हैं तो वो उसकी विधि बहुत लंबी चौड़ी बताएंगे, है ना, प्राणायाम करो, आसन करो, ये जाप करो, फलाना करो, बहुत विधि साधन क्रियाएं बताते हैं। पर योग किसको किसके साथ लगाना है वो तो कोई नहीं बताता। तो कहेंगे अपने अपने इष्ट को याद करो, बाबा ने मूल सत्य सरल शब्दों में हमें बताए और यही सत्य की निशानी है कि सत्य हमेशा सरल और स्पष्ट होता है। अधूरा ज्ञान होता है इसलिए अलंकारिक भाषा यूज करनी पड़ती है। कई बाबा के बच्चे सोचते हैं कि बाबा तो सिर्फ ज्ञान ही देते रहते, कुछ और भी दे देवे, जमीन भी दे देवे, पैसा भी दे देवे, हाँ कुछ हमारे प्रॉब्लम्स भी ठीक कर दे, बीमारी दूर कर दे, बाबा तो ज्ञान ही सुनाते रहते। पर एक्चुअली वो ही सबसे बड़ी प्राप्ति है क्योंकि ज्ञान ही मन और बुद्धि को ठीक रखता है, है ना? जब परिस्थितियां आती है, सब कुछ उजड़ जाता है, खत्म हो जाता है, उस समय अपने आप को ज्ञान से ही तो समझाते हैं, है ना? ज्ञान से ही तो मन बुद्धि को ठीक रखते हैं। अनुभव है आप सबका, हाँ कोरोना में क्या मदद आई, हाँ लोग तो घबरा गए, चिंतित हो गए, भयभीत हो गए, टेंस हो गए, क्योंकि अपने आप को कैसे समझाएं। और बाबा के बच्चों ने पिछले 8 मास 10 मास उस लॉकडाउन की बीमारी की महामारी की परिस्थिति में हम अपने आप को ठीक रख सके क्योंकि बुद्धि में ज्ञान है ना। बाबा रोज समझाते हैं, देखो ऐसी कोई मुरली नहीं है जिसमें बाबा ने अंतिम समय की महाविनाश की बातें ना की हो। रोज कुछ ना कुछ बाबा इन परिस्थितियों विनाश की बातें करते। जब प्रैक्टिकल ये आया तो बुद्धि में क्या समझ आई उस समय, अब हरेक ने अपने आप को क्या समझाया कि बाबा ने पहले से ही हमें कहा, ये कोई नई बातें नहीं, बाबा ने पहले से हमें बताया। और वो ज्ञान बुद्धि में होने के कारण हमें शॉक नहीं लगा, आघात नहीं लगा, घबरा नहीं गए, चिंतित नहीं हो गए, क्योंकि ऐसी सिचुएशन आई कितने भी धनवान देश, कितने भी एडवांस टेक्नोलॉजी वाले देश, कितने भी मॉडर्न महासत्ताएं भी लाइन में आ गई, सबके सामने एक परिस्थिति हो, और भारतवासी वैसे भी भक्त आत्माएं, भक्ति का, धर्म का, और हम बच्चों के पास तो बाबा का सत्य ज्ञान बुद्धि में, तो हम सहन कर पाए, एडजस्ट कर पाए, उससे पार कर पाए। इसलिए कहा ना, जो मेंटली और फिजिकली शक्तिशाली रहे वो अपने आप को सेफ रख सके। इसलिए इस दिव्य बुद्धि की गिफ्ट को जो बाबा के सत्य ज्ञान से मिलती, बाबा जो सत्य मूल ज्ञान देते हैं और उससे हम सबक सीखते हैं, वो दिव्य बुद्धि, वो दिव्य बुद्धि है। बाबा ने आत्मा का ज्ञान दिया, उससे हमने क्या सबक सीखा? प्रथम पाठ हमें बताया गया ना कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, हम सभी आत्माएं एक बाबा के बच्चे हैं, आत्मा आत्मा भाई भाई है। इससे हमने क्या सबक सीखा, क्या सीखा कि हमें देह भान में नहीं रहना है, आत्मा भान में रहना है, हरेक को आत्मा दृष्टि से देखना है, देह दृष्टि से नहीं देखना है। विश्व एक परिवार है, सभी ऊंच नीच भेदभाव से मुक्त होना है। ये जो हमने पाठ पढ़ा, लेसन सीखा और उससे प्रैक्टिकल में लाया, वो विजडम है कि हमारे में ये विजडम आया, समझदारी आई हमारे में। ऐसे ज्ञान के हर सत्य से दिव्य बुद्धि हमें प्राप्त होती है। सद ज्ञान से सदबुद्धि इसको कहते कहते ना, भगवान अकल बांटने आते हैं। तो रोज सुबह बाबा क्या करते, क्या करते, मुरली के द्वारा अकल ही तो बांटते हैं ना। दुनिया में कहते हैं ना भी, जब भगवान अकल बांटने आए तो कहाँ गए थे, सोए थे क्या? रोज सुबह बाबा अकल बांटते, सदज्ञान से सदबुद्धि प्राप्त होती। और उसी का रिजल्ट हम सबके जीवन में क्या आया है कि जो कुछ असत्य है, अपवित्र है, असार है, अयथार्थ है, उससे हमारा मन उठ गया, वैराग्य आ गया कि ये क्या है, जो नहीं करना चाहिए वो हम करते रहे हैं, जो करना चाहिए वो हम नहीं कर रहे हैं। तो हमें असत्य से वैराग्य आए, ज्ञान से वैराग्य उत्पन्न होता है। जितनी गहराई से बाबा के ज्ञान को हम समझते हैं, उतना अंदरूनी जिगरी वैराग्य आता है। वरना आप देखो हम आपस में दुखी होते रहते थे, उसने ऐसा बोला, ये किया, वो किया, ठगी की, बनावट किया, जो भी, मतलब यही तो अयथार्थ, असत्य, अपवित्र बातें दुख देती रही ना, हम दुखी होते रहे पर वैराग्य नहीं आया, वापस उसी में लगे रहते। आपस में हम गलत बातों से दुखी भी होते हैं, टिकाएं भी करते हैं, पर चिंतन भी करते हैं और फिर वापस उसी में ही लगे रहते हैं। हम मुक्त नहीं हो पाते। ये बाबा के ज्ञान की शक्ति सोचो, 63 जन्मों की, आधा कल्प की भक्ति से जो संस्कार नहीं बदले, जो बुराइयां नहीं छूटी, वो बाबा के सत्य ज्ञान से छूट गए। कोई एक दिन में जीवन परिवर्तन हो गया, कोई 3 दिन के शिविर में बदल गए, कोई 8 दिन के कोर्स में बदल गए, है ना? आप में से भी होंगे ना, ज्ञान मिलते ही परिवर्तन हुआ। ये सत्य ज्ञान की शक्ति जो आत्मा को इतना जगा देती, जो ये गलत बातें, पतित बातें हमारे जीवन से बदल गई, वैराग्य आ गया कि अब ये हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। हरेक अपने परिवर्तन को जानते हैं, क्या क्या परिवर्तन हुआ। किसी कहने से हम नहीं बदले, है ना? ज्ञान से अपने साथी और आत्मा में परिवर्तन आता है। देखो हमारी दिनचर्या बदल गई, कहां देर तक सोते रहते थे, बाबा ने हमें अमृत वेले से जगा दिया। हमारा आहार, विहार, व्यवहार, अहरवाइश, संग, बांचन, पूरी दिनचर्या चेंज हो गई। को ही हम कहते हैं हम शूद्र से ब्राह्मण बन गए। इसको कहते हैं कमल फूल बनना। इस सत्य को ना जानने के कारण बेचारे वो घरबार छोड़ के चले गए, जंगलों में गए और स्थानों पर गए, भगवे वस्त्र पहन लिए, किसी ने माथा मुंडा दिया, किसी ने जटा बढ़ा दी, उन्होंने ये सब किया ना। भी मन बुद्धि संस्कार को बनाना है, वो नहीं जानते, ना जानने के कारण ही तो ये सब किया इन्होंने। बाबा ने मूल सही बातें हमें बताई कि दुनिया छोड़ने की जरूरत नहीं है, देहभान छोड़ना है। जैसे ही हम अपने आप को शरीर से अलग आत्मा समझते हैं, भले हम शरीर में हैं परंतु हम शरीर नहीं हैं। शरीर तत्व है और मैं आत्मा तो शक्ति हूं, दिव्य ज्योति हूं, चैतन्य हूं। तो जितना हम ये देह से न्यारा अपने पवित्र स्वरूप को महसूस करते हैं, तो ये सब परिवर्तन हमारे जीवन में आता है। तो इस दुनिया में रहते, परिवार में रहते, दुनियावी प्रवृत्ति करते, बाबा ने हमें कमलफूल समान बनाया, अर्थात अज्ञानता से, बुराइयों से, विकारों से हमें न्यारा बनाया। अब ये हर एक अपने आप को देखिए, मोटे मोटे विकारों से तो हम न्यारे हो गए। सबसे बड़ा काम महाशत्रु, जिस पर विलाप किया, ब्रह्मचर्य की धारणा हम करते, बिना पवित्रता योग्य बन नहीं सकते। अब हम पुरुषार्थ करते हैं कि कर्म में तो हम पवित्र बन गए, बहुत बड़ी शक्ति है ना? बाकी सभी धर्म संस्थाएं, पंथ संप्रदाय, बाकी सब कुछ तो सिखाते हैं भाई, सत्य बोलो, झूठ ना बोलो, प्रेम से बोलो, दया करो, दान करो, धर्म करो, पुण्य करो, ये सब कुछ तो सिखाते हैं, पर कौन सी बात नहीं सिखा सकते हैं? पवित्र बनो, योगी बनो, ये कोई नहीं सिखा। ये बात सिखाते हैं और हम सबने ये सीखा है, जहां सभी धर्म अटक गए हैं, हमारा पुरुषार्थ वहां से शुरू होता है। हमारा लक्ष्य है, हम ब्रह्मचर्य से शुरू होते हैं और हमारी मंजिल है संपूर्ण निर्विकारी बनना, देवता बनना। माना देवताओं की महिमा में एक बात कौन सी आती है? आती है ना ये संपूर्ण निर्विकारी बनना। विकार माना विकार, वो तो है ही बुराई भाई। काम क्रोध बुरे हैं, बाकी कोई अच्छे विकार है ऐसे हम कहेंगे? हाँ, ऐसा कह सकते हैं? नहीं। काम हो, क्रोध हो, लोभ हो, मोह हो या अहंकार हो या कोई भी विकार, आत्मा को ऊंची स्थिति से नीचे गिराते। अगर बाबा का बनकर पवित्रता, आत्मदृष्टि की धारणा नहीं होती है, तो हम आत्मभिमानी बन ही नहीं सकते, प्रथम पाठ ही नहीं पढ़ सकते। बाबा का प्रथम आदेश कौन सा है? आत्मभिमानी बनना। रोज बार 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 कौन सी शिक्षा बाबा हमें रिवाइज कराते हैं? आत्मभिमानी बनना, क्योंकि विषय विकार के कारण हम देह भान से न्यारे हो ही नहीं सकते। कहां देह भान को भूलना, देह भोगने की तो बात ही नहीं। इसलिए पवित्रता हमें देह भान से न्यारी करती। अगर बाबा के बनकर गुस्सा करते रहते हैं तो आत्माओं का प्यार नहीं मिल सकता है। हर कोई कहेंगे हम अपने आप सेवा कर लेंगे, हम इनके साथ सेवा नहीं करेंगे, ये बहुत गुस्सा करते हैं। आत्माओं के प्रिय नहीं बन सकेंगे। घर में भी गुस्सा करेंगे तो घर में जाएंगे और घर वाले दूसरे कमरे में चले जाएंगे कि भाई बाघ आया है, हाँ कहीं बरस न पड़े, गुस्सा न कर दे। हम आत्माओं का प्यार नहीं पा सकते। बाबा के बनकर भी लोभ लालच में रहते हैं तो हम भाग्य नहीं बना सकते। धन साधन होते हुए सेवा में सफल नहीं कर सकेंगे। और जो मोह में फंसे रहते हैं, देह संबंधों के मोह में फंसे रहते हैं, वे भगवान का प्यार नहीं पा सकते। सबसे बड़ी नुकसान ये होता, क्योंकि जिसमें मोह है बुद्धि वहीं फंसी रहेगी। बुद्धि बाबा के पास ऊंची उठ नहीं सकेगी, भगवान का प्यार नहीं पा सकेगी। इसलिए तो बाबा कहते हैं नष्टो मोहा बनो तो स्मृति स्वरूप बन सके। और अभिमान अगर आता है, सेवा का अभिमान, सहयोग देने का अभिमान, बुद्धि का अभिमान, अपनी विशेषताओं कलाओं का अभिमान, तो बाबा कहते हैं ना आपकी उतरती कला शुरू हो जाएगी। जिस गुण कला विशेषता सेवा सहयोग का अभिमान आया, बाबा कहते वो गुण अवगुण बन जाएगा, क्योंकि अमृत में जहर पड़ गया, अभिमान का जहर पड़ गया। इसलिए बाबा कहते हैं निमित्त भाव से सेवा करो, नम्रता से चलो। तो हम सबका ये लक्ष्य है कि हमें मन वचन कर्म से सभी विकारों के अंश वंश पर पूर्ण विजय बने। जो चीज हमने छोड़ी है वो पूरी छोड़नी, जो कर्म में आचरण में नहीं लाना है वो मनसा से भी क्यों सोचना है। तो ये डिटैचमेंट न्यारापन हमें खुद अपने आप में लाना। कि मनसा भी शुद्ध हो, कहते हैं भाई जिस पेड़ के आम खाने नहीं हैं वो गिनने क्यों है। जिस गली में जाना नहीं है वो मुड़ मुड़ के देखना क्यों है। इसलिए मनसा से भी बाबा कहते हैं ना जो छोड़ चुके हैं वो मनसा से भी सोचना नहीं। इसलिए हम विशेष समय निकाल कर क्यों तपस्या करते हैं? आप समय निकाल करके आए हैं, अपनी जिम्मेवारियां दे करके आए हैं, धन खर्च करके आए हैं, क्यों? ताकि हम शांति से बैठें, साइलेंस में रहकर अपने आप को देखें। स्वदर्शन करें कि कर्म से हमारा कंट्रोल है, हम वो दुनिया जैसा गुस्सा नहीं करते, ऐसी वाणी नहीं बोलते, वो भ्रष्टाचार नहीं करते, उसी वो अहंकार देह अभिमान वाला नहीं करते, कर्म में हमने कंट्रोल किया है। कभी कभी भी क्यों हम उसके वश हों? तो जब खुद का ये लक्ष्य है कि मन वचन कर्म से मुझे कमल फूल बनना है, इसलिए खुलौकी से अपने आप को समेटा कि अनावश्यक लौकिक में, अनावश्यक दुनिया प्रवृत्तियों में हमें फंसे नहीं रहे। देखो, ज्ञान स्वरूप बनकर हम देखते हैं तो उसी में आ रहा है ना, बिन जरूरी बातों में लोग कितने फंसे हुए, अनावश्यक प्रवृत्तियों में कितने फंसे हुए। हम सब पवित्र बने हैं तो देखो वहां से निकले हैं, अब हम स्व उन्नति के लिए समय देते हैं, सेवा के लिए समय देते हैं, नहीं तो वही घंटों फिल्में देखना, टीवी देखना, मेरी करना, फैशन करना, टाइम तो वेस्ट करते ही थे ना, तो वहां से हम निकले। भी कहते कि अलौकिक जन्म लेकर लौकिक में ही फंसे रहे, अलौकिक जन्म का फायदा क्या है, मतलब क्या है? हम समझते हैं कि यही संगम का समय है जब हम अपने आप को जितना ऊंचा, महान, पवित्र, श्रेष्ठ बनाना चाहें हम बन सकते हैं, युग में तो बन सकेंगे, और कोई में बात नहीं, ज्ञान देते नहीं, बाबा के सिवाय और कोई बना नहीं सकता है, यही सही है। इसलिए बाबा कहते हैं संगम समय है, ये याद रखो, बाबा का आदेश और समय कार दोनों बुद्धि में याद रखकर अब मुझे करना चाहिए, नहीं करना है, प्रैक्टिकल करना है, मुझे अपनी आध्यात्मिक उन्नति करनी है तो भौतिक, लौकिक, दैहिक, सांसारिक कामनाएं मुझे करनी चाहिए। दोनों लड्डू तो नहीं मिल सकते हैं ना, दोनों जाएंगे, लौकिक सांसारिक दुनियावी भौतिक तो क्या प्राप्त होगा जब हम आध्यात्मिक रूप से ऊंचे उठ जाएंगे। तो अब हमें वो दुनियावी इच्छाएं नहीं है, हमने अपने आप को वहां से समेटा है, हमने शॉर्ट आउट किया है कि वेस्ट निकाल दे, करना है उस पर फोकस हो सके। कहीं कहते हैं ना, बड़ा खींच होता है, ये सेवा करें कि लौकिक में जाएं, क्या करें, वहां लगाएं कि यहां लगे, ये क्यों खींच होती है, कि हमने ज्ञान समझने के बाद भी अपने आप को समेटा नहीं, कि व्यर्थ करना है और जो समर्थ सत्य करना है तो आप अपना टाइम, माइंड, मनी, एनर्जी लगा सके। इसलिए अब अंदरूनी मनसा में, वृत्ति में, इच्छाओं में, संकल्पों में, भावनाओं में, संस्कारों में, जो हमारा इंटरनल स्वरूप है, उसमें मुझे अपने आप को और शुद्ध, पवित्र, श्रेष्ठ बनाना। तो मुझे अंदर बाहर मैं साफ और श्रेष्ठ हूं, ये अनुभव हमें होंगे। तो एक है विकारों को जीतना, कमल फूल बनना, दूसरा है कर्मेंद्रिय जीत, हमें हर कर्मेंद्रिय को भी कमल फूल बनाना है। देवताओं की महिमा में क्या है, हस्तकमल, मुख कमल, नयन कमल, चरण कमल, गाते हैं ना देवताओं की महिमा, कि उनके हर कर्मेंद्रिय कमल फूल समान थे। भक्ति में कर्मेंद्रियों को शुद्ध करने का ज्ञान नहीं था तो उन्होंने इंद्रियों का दमन किया, आंख बंद करके बैठो, है ना, भक्ति में वो समझते हैं दृष्टि हमारी चलित ना हो। कई धर्म संप्रदाय में देखो बहनों को पीछे बिठाएंगे, दृष्टि हमारी ठीक रहे, कई इस बात को बहादुरी समझते हैं, हमारे गुरुजी स्त्रियों को देखते नहीं है। अब ये बहादुरी है कि कमजोरी है, हमें आंखें बंद नहीं करना है, आंखें फोड़नी नहीं है, हमें तो दृष्टि को आत्मिक बनाना है। ये है नयन कमल। तो रोज अपना चार्ट देखो कि हमारी दृष्टि सबके लिए आत्मिक है। बाबा ने भी अभ्यास किया था ना, देह संबंधों में दृष्टि आत्मिक रहे, उसके लिए बाबा के जन्म कहानी में पढ़ा होगा ना, बाबा लिखते थे, जसोदा जो बाबा की पत्नी थी तो बाबा लिखते थे जसोदा भी आत्मा है, नारायण बेटा भी आत्मा है, राधिका पुत्र वधु भी आत्मा है। ये बाबा ने अभ्यास किया। आप सभी तो बाबा के ही हम जिन्स है ना, बाबा भी आपकी तरह ग्रस्ती थे, परिवार में थे, जिम्मेवार थे और अलौकिक बने, समर्पित हुए तो और डबल जिम्मेवारियां आ गई। तो देखो हमारी भाइयों की भाइयों के प्रति, बहनों की बहनों के प्रति, भाइयों की बहनों के प्रति, बहनों की भाइयों के प्रति हमारी रूहानी दृष्टि है। और हर आत्मा को बाबा कहते हैं, हरेक को आत्मा दृष्टि से देखो, लेकिन आत्मा को भी ओरिजिनल अनादि शुद्ध स्वरूप में दे, नहीं तो हरेक के गुण अवगुण कमजोरियां दिखेगी, ये ऐसा है, ये वैसा है, वो भी तो व्यर्थ चिंतन है। इसलिए आत्मा को देखना है और आत्मा को भी उनके शुद्ध ओरिजिनल पवित्र स्वरूप में दे, रूहानी स्नेह की दृष्टि से, सम्मान की दृष्टि से, तो कहेंगे नैन कमल बने हैं। अज्ञान काल में जीवन को देखिए, बाबा कहते हर कर्मेंद्रिय से हमने भूलें की है, पाप किए हैं। देखो आंख नाक कान मुख हाथ पांव तो छोड़ो, हमने तो चेहरे के हाव भाव से भी गड़बड़ कर्म किए हैं, इशारों से ऐसे ऐसे करके, ये करते हैं ना ऐसे, ये भी तो क्या है, देखो देखो वो जो जा रही है करके, तो हर कर्मेंद्रिय से हमने भूलें की है, पाप किए हैं। तो अब हमें हर कर्मेंद्रिय से सत्कर्म करना, वो है न्यारा प्यारा दिव्य कमल बन। कान कमल है, नहीं तो कितना अनावश्यक तेरी मेरी, यहाँ की वहां की, सेंटर की उस सेंटर की, इस ब्राह्मण परिवार की उस ब्राह्मण परिवार की बातें तो करते रहते हैं। तो कान कमल कहाँ हुए? और जब ऐसी तेरी मेरी व्यर्थ बातें करते हैं तो कितना इंटरेस्ट से सुनते हैं, अरे बताओ बताओ मैंने नहीं सुना, फिर से बताओ क्या बात कर रहे हो, जैसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बातें हो देवता बनने के लिए, वो सुने बिगर देवता नहीं बनेंगे, इतना इंटरेस्ट से हम व्यर्थ बातें सुनते हैं। और घंटा तेरी मेरी सब कुछ करके फिर कहेंगे छोड़ो ड्रामा, अरे भाई पहले ही करो ना, फिर पहले ही ड्रामा को याद करो, ज्ञान को याद करो। कुछ भी ऐसा हुआ है वो अच्छा करने में हम कुछ मदद कर सकते हो, मार्गदर्शन दे सकते हो तो हम करें। नहीं तो कान कमल कहाँ हुए? जो हम सुनते हैं उसी पर ही तो फिर चिंतन चलता है, फिर मुख से वर्णन होता है। मुख कमल है ना, बाबा कहते मुख से ज्ञान रत्न निकले, सुखदाई वाणी निकले, ज्ञान रत्न निकले, ऐसे शब्द ना हो जो दूसरे को दुखी कर दे, हिम्मत वो हार जाए, निराश हो जाए, तो मुख कमल। वाणी पर संयम बहुत जरूरी है, जीभ स्वाद पर कंट्रोल, नहीं तो बाबा कहते ना सारा दिन खाऊं 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 होता रहता है। एक भाई तंग हो गया कि योग में बैठता हूं खाने की बातें याद आती, आज पकोड़े बनाएंगे, आज ये बनाएंगे, आज इधर जाएंगे उधर जाएंगे। हम गुजरातियों को तो स्वाद का ज्यादा ही है ना, मेहनत करनी पड़ती है विजयी बनने के लिए। तो हर कर्मेंद्रिय, बाबा कहते हैं सुनने का भी एक रस होता है। दो वहां बार रहे हैं, यहां मैं बैठी हूं, पर मेरा अटेंशन क्या बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं। सुनने का रस, देखने का रस, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन कैसा बैठा है, क्या चित्र लगे हैं, देखने का रस, बोलने का रस। कोई आज जो मैं बात करूं, कब से अकेली बैठी हूं, कोई नहीं आया बात करने के लिए, बोलने का रस। कईयों को भट्ठी में घबराहट होती है क्योंकि साइलेंस में रहना है, मजा नहीं आता है क्योंकि अपने आप से बात करना, बाबा से बात करना, स्वदर्शन करना, ये करना नहीं आता है। तो इंद्र रस जो हमें बहिर्मुखी बनाते हैं, हमें तो अंतर्मुखी सत्प्रधान बनना है। तो जितना हो सके कर्मेंद्रियों का सदुपयोग करना है। जिस मुख से ज्ञान दे रहे हैं उस मुख से तेरी मेरी नहीं करना है। करके देखिए, घंटा तेरी मेरी करिए और फिर योग में बैठिए। योग, हाँ, योग लगेगा नहीं। जिस मन बुद्धि मन को याद करते हैं, हाँ, उस भगवान के बच्चों की हम निंदा तेरी मेरी पर चिंतन करेंगे तो बाबा खुश होगा। आपके बच्चों की निंदा करके कोई आपको खुश कर सकता है? हाँ, कर सकता है। हम आपके बच्चे, बाबा ने तो पहले ही कह दिया है कि सभी नंबर वाले वैरायटी है ना। तो कर्मेंद्रियों को कमलफुल बनाना है। अब दुनिया से तो हम न्यारे हो चुके हैं, अगर समय रहते हैं, पर हमारी धारणाएं ऐसी, हम के चले तो भी वो समझते हैं ये अलग ही है। तो हम अलग ही समझते हैं क्योंकि हमारे नियम मर्यादाएं धारणाएं ऐसी। तो दुनिया से, लौकिक परिवार समाज से रहते हुए भी हम न्यारे ही हैं क्योंकि हम निभाते हैं। बाबा कहते हैं ना, तोड़ना नहीं है, तोड़ निभाना है। अब हम ईश्वरीय परिवार से जुड़े हैं, ईश्वरीय परिवार में भी कमल फूल रहना है। यहां भी हमें कमल फूल रहना है। एक दो से अच्छी वृत्तियां और धारण करनी है। संग दोष में, एक दो के रंग में, भाव में नहीं आना है। अटैच नहीं हो जाना है ना। बाबा ने ये ईश्वरीय परिवार किस लिए दिया है? ये सपोर्ट सिस्टम किस लिए बाबा ने बना के दी? एक अकेला संपूर्ण नहीं बन सकता है। हमें एक दो के सहयोग से संपूर्ण बनना है। ये हमें इसलिए परिवार गया है। और इस आपस में मिलते हैं तो खुशी होती है ना। 10 महीना नहीं मिले तो कैसा लगा? हाँ, वैल्यू हुई ना ईश्वरीय परिवार की, कि एक दूसरे कितना गुस्सा। बाहर अपने लौकिक घर अंदर है, सेंटर के वातावरण की वैल्यू हुई ना हमें। निमित्त बहनों से हमें पालना मिलती है, मार्गदर्शन मिलता है। हम आपस में मिले हैं इसलिए हमें मिलकर संपूर्ण बनने का आवश्यक। बाबा कहते ना, जैसे सर्व के सहयोग से बड़े बड़े सेवा के प्रोग्राम कर लेते हैं, ऐसे हम एक दो के सहयोग से
सब करना है।
और बातों के लिए नहीं, चाहे वो तेरी हो, पिकपारियां हो, लौकिक प्रसंग, उन बातों के लिए नहीं। और हमें मिलकर जो बाबा ने यज्ञ रचा है कल्याण के लिए, वो सेवा कार्य संपन्न करना। तो हमारे अंदर आपस में साधारणता या लौकिकता न आ जाए, हम अलौकिक हैं। ये याद रहे, हम लौकिक नहीं हैं, हम अलौकिक आत्मा हैं। हमें आपस में भी नियम मर्यादा रूहानियत से रहना। तो कहेंगे कमल फूल, ईश्वरीय परिवार में भी कमल फूल, ये परख शक्ति हो हमें किसका संग करना चाहिए, किसका नहीं करना चाहिए, किसके संग से रंग लगाना चाहिए, किसके संग से रंग नहीं लगाना है। ये जागृति, ये परख शक्ति हमारे में, तो हम अपने संपूर्णता के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ेंगे। फरिश्ता बनना माना क्या करना है, ब्राह्मण जीवन में और रिफाइननेस लाने और क्वालिटी बनना है। ब्राह्मण जीवन में जो कुछ हम सेवा पुरुषार्थ करते हैं, वो करते हुए भी न्यारापन, निमित्तपन, ट्रस्टीशिप, मैपन नहीं, मेरापन नहीं, उसी को फरिश्ता है। वो लाइट हल्का उड़ता है माना, इजी, सहज और ऊंचे लक्ष्य की ओर जाता है। सिर्फ योग में फरिश्ता नहीं बनना है, हमें प्रैक्टिकल फरिश्ता बनना है। तो इस विषय पर और गहराई से आप सोचेंगे, स्वदर्शन करेंगे और अपने आप को बिल्कुल, बाबा कहते हैं ना, स्वच्छ, शुद्ध, दिव्य बनाने के लक्ष्य के साथ, बाबा कहते हैं ना, कमल फूल बनकर कमाल करनी। क्या कमाल करनी है? फरिश्ता बाप समान हमें बनना। पसंद है तो हाथ ऊपर करो। ये लक्ष्य पसंद है? अब खुद ही वो अंदर अंदर चिंतन, स्वदर्शन और अपने आप को, खुद खुद को मजबूत करो कि थोड़ा बहुत बनकर खुश नहीं हो जाना। बाबा संपूर्ण बनाने आए हैं तो वो प्राप्ति मुझे कर ले। ओम शांति।
ओम शांति।
बाबा की याद में बैठेंगे।
हाँ। विशेष गीता दीदी 7:30 बजे तक बहुत पावरफुल योग करेंगे। सभी अलर्ट होकर बैठेंगे, कोई भी लूज ना बैठे। और 8 बजे तक सभी भाई बहने बैठे रहेंगे, योग करेंगे। 8 बजे सविता बहन आएंगे और कल का प्रोग्राम बताएंगे। तो सभी भाई बहने कल का प्रोग्राम सुनकर ही जाएंगे। ओम शांति। योग कराने वाले बहने आ जावे।
दो मिनट सभी खड़े हो जाए। डिटैच होके खड़ा होना था। बॉडी को रिलैक्स कर लो, हाथ पांव स्ट्रेच कर लो, कमर ठीक कर लो। आगे भी एक घंटा आपको बैठना है, इसलिए खड़ा नहीं रहना, हर एक को कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करनी। हाँ, जानते हो ना हर एक क्या करना है। हाँ, हाथ ऊपर खींचिए। हाथ स्ट्रेच करिए। पांव स्ट्रेच करिए। थोड़ा धरती को भी हाथ लगाइए। कमर ठीक करिए। एक दो को देख के मुस्कराइए। मुस्कराना, मुस्कराना,
आवाज से नहीं हंसना।
हाँ,
है
मुस्कराना, स्माइल,
आवाज नहीं। मोबाइल
रूहानी दृष्टि से देखिए।
मोबाइल
शांति
के चालू है।
एक दो को करना है, आगे पीछे एक दो को ओम शांति करिए।
मोबाइल किसी किसी के चालू हैं अभी भी, प्लीज
दो अभ्यास खड़े होके करेंगे। स्व में आ जाइए। देहभान से न्यारे, अपने असली शुद्ध सत्य स्वरूप में स्थित हो जाइए। इस शरीर रूपी गुफा में मस्तक के आसन पर विराजमान मैं जगमगाती चैतन्य ज्योति हूँ। मैं योगी तपस्वी आत्मा हूँ। राइट साइड घूम जाइए। मैं आत्मा शरीर कर्मेंद्रियों के साथ कमल फूल समान। मेरी सोचने की, देखने की, सुनने की, बोलने की, मेरी हर प्रवृत्ति, रूहानी हो, न्यारी और दिव्य हो। मन बुद्धि संस्कार जो मुझ आत्मा की शक्तियां हैं और कर्मेंद्रियों का श्रीमत अनुसार उपयोग कर, आँखों से देखना है पर जो देखा उसका रस नहीं चखना है। मेरे व्यक्तिगत हर कर्म मुझे न्यारा और प्यारा करना है। शरीर रूपी साधन को स्वच्छ रखना है, स्वस्थ रखना है। बाबा के सामने हो जाइए, लेफ्ट साइड घूम जाइए, बिल्कुल धीरे से न्यारे होकर। इस अंतिम जन्म में जो भी देह संबंध मिले हैं उनके साथ व्यवहार कमल फूल समान न्यारा और प्यारा। हर संबंध को रूहानी नजर से देखना है। हर संबंध को ज्ञान युक्त अलौकिक बनाना है। सुख लेना है, सुख देना है। ऊंची सम्मान की नजर से व्यवहार करना है। धीरज, सहनशीलता, हिसाब चुकाने हैं, नए बनाने नहीं हैं। कर्म योगी बनकर रहना है। बाबा के सामने हो जाएं, धीरे से बैठ जाएं। तीसरा अभ्यास, संगम युग की अलौकिक सौगात, अलौकिक परिवार है। अलौकिक परिवार में अलौकिक बनकर रहना है, अलौकिकता से चलना है। हम साथी स्टूडेंट्स हैं, साथी सेवाधारी हैं। बाकी मेरे सर्व संबंध एक बाबा से हैं। हम सब मिले हैं इसलिए कि हम बाबा से मिले हैं। हमारे आपसी व्यवहार में सदा बीज बाबा है। चौथा अभ्यास, सेवा कार्य में निमित्त बनकर सेवा। बाबा का कार्य हमारा कार्य है। यज्ञ सेवा करें, ज्ञान दान की सेवा करें, विश्व सेवा करें, मनसा सेवा करें। मन वचन कर्म से करें, तन मन धन से करें, गुण कला समय से करें, निमित्त भाव और निर्माणता से मुझे करें। बाबा ही करण करावन हार है, मैं आत्मा निमित्त बन कर करती
धन्य तभी बनता।